के खा रहा था जैसे ड्रंक, जैसे आदमी पिया हुआ है। इंसान को बहुत ही कमज़ोर बनाया गया है, वखुले खल इंसान हो ज़ईफ़ा, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया। सारे मखलूक के जो बच्चे होते हैं हम, हमारी आंखों में सामने हम जो देखते हैं, परिंदों के हों के जानवरों के हों, वो पैदा होते ही वो दौड़ने भागने लगते हैं। इंसान का बच्चा नहीं दौड़ सकता, वो चोच मारते हैं, अपने गिजा की तलाश में निकल जाते हैं। इंसान का बच्चा नहीं कर सकता कुछ, इसके मसला उर्दू का करो, तर्जुमा करो, क्या तर्जुमा चाहिए आपको? अच्छा, अंग्रेजी का मसला भी। वो सिर्फ अपनी जरूरत का इजहार अपने रोने के जरिए से करता है। अच्छा रोता है, पता चलता है कि साहब इसको भूख लगी है, रोता है तो पता चलता है इसके पेट में दर्द है, रोता है तबीयत अच्छी है ख़राब है, रोता है अपनी माँ का अटेंशन चाहता है। इंसान बहुत कमज़ोर है, थोड़ी सी एनर्जी आ गई, चलने फिरने की ताकत आ गई, भागने दौड़ने की ताकत आ गई, थोड़ा गर्मी महसूस होने लगी, बड़ेपन में आ जाते, समझते हैं कि हम बहुत कुछ हैं। और यही चीज़ अल्लाह पाक को बहुत नापसंद है। कितने ही जोर से तुम पैर मार लो, जमीन को फाड़ नहीं सकते। इन्ने कल तखलिकल अर्ज़, क्यों बड़ापन करते हो? कुरान पाक में क्यों हिमाकत करते हो? अगर ज़मीन पर पैर मारोगे तो ज़मीन फटेगी नहीं तुम्हारे मारने से। वलन तबलुगल जिबाल तूला, पहाड़ों के नीचे से गुजरते रहते हो, कभी सोचा कि तुम्हारी हाइट इतनी हो सकती है? मैं तो पहाड़ों से ऊंचे हो नहीं सकते, लंबाई में पैर मार के ज़मीन को फाड़ नहीं सकते। हर वक्त बंदिश में, कैद में, हालात की, तगयुरात की, तब्दीलियों की, चेंजेस की कैद में होता है बंदा, कुछ कर नहीं सकता। अल्लाह पाक के हाथ में मौत है, अल्लाह पाक के हाथ में हयात है, उनके हाथ में तंदुरुस्ती है, उनके हाथ में बुढ़ापा है, उनके हाथ में जवानी है, उनके हाथ में बुढ़ापा है। हम अपनी मर्जी से जवान नहीं हुए और जवान होने के बाद अपनी मर्जी से बूढ़े नहीं होते। जब तक उनको जवान रखना है जवान होते हैं, जब बूढ़े कर देते हैं तो बूढ़े हो जाते हैं। एक मतलब आप बूढ़े हो गए तो फिर वापस नहीं आते। जो जा के ना आए वो जवानी देखी, और जो आ के ना जाए वो बुढ़ापा देखा। एक मतलब आ जाता है तो फिर जाता नहीं, कहते साथ मैं जो मुझे साथ नहीं छोड़ना है आपको, मैं तो आपके साथ ही रहूँगा, साथ ही जाऊँगा, वापिस ही नहीं। कभी हम अपने जिस्म पर कोशिश नहीं करते। ये पूरी दुनिया में अजीब व गरीब इंसान है, जानदार जो लोग जितने भी हैं मखलूकात, उसमें इंसान भी है हमारे साथ। स्पेशल गौर करने की चीज़ है, एक गोश्त का मशीन है, स्टील का मशीन, लकड़ी का मशीन, प्लास्टिक का मशीन, गोश्त का है ये, गोश्त का, पोस्ट का, हड्डियों का, रगों का, वो चल रहा है, चालू है तो चालू है, और एक मरतबा स्टार्ट हो गया तो बंद ही नहीं होता, मरने तक चलता ही रहता है। बंद हो गया तो मशीन बेकार। ऐसे अल्लाह पाक की कुदरत है, हम अल्लाह पाक की कुदरत में कैसे बंधे हुए हैं। तो जगह जगह कुरान पाक में और अहादीस मुबारका में अल्लाह पाक ने इंसान के इज्ज को, उसके आजिज़ होने को, उसके मजबूर होने को, उसके कुछ न कर सकने को बयान फरमाया कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और जो कुछ करता हुआ बंदा अपने को नज़र आता है वो भी कुछ चीज़ों में है, उसके पीछे भी अल्लाह का ही हाथ होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास एक आदमी आया, कहने लगे कि बंदा कितना मुख्तार है, फरमाया एक पैर उठा लो, फरमाया कि कितना मजबूर है, फरमाया दूसरा उठाओ। दो पैर उठा नहीं सकता बंदा एक साथ, बस इतना इख्तियार है, इतना जबर है। हर आदमी इख्तियार और जबर के दरमियान है। ऐसे इंसान के लिए क्या चीज़ देव देती है, उसके लिए जो चीज़ मुनासिब है, देव देती है, वो तवाज़ु है, आजिज़ी है अल्लाह के मुकाबले में। अल्लाह पाक की बड़ाई को कबूल कर लेना, अल्लाह पाक के कंट्रोल को कबूल कर लेना, अल्लाह की मर्ज़ी को कबूल कर लेना और आजिज़ी करना। जब बंदा सरेंडर होगा, आजिज़ होगा, तो उसको उसकी जिम्मेदारियां बताई जाएं। तो हमें हमारी जिम्मेदारियां फिर बताई गई। हमारी जिम्मेदारियों में दो तरह की चीजें हैं, हमारी जरूरियात, हमारे मकासिद। जरूरत आपको जब तक दुनिया में रहोगे तो क्या चीजें पेश आ सकती हैं आप, मकसद जिस चीज के लिए तुम्हें दुनिया में रखा गया वो क्या है। जब तक आदमी यहाँ रहेगा उसको साया चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, कहीं आना जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बड़ा हो गया है तो शादी चाहिए, उसको फिर बच्चे हो गए तो फिर बच्चों के साथ ये मसाइल होते हैं। जब तक दुनिया में रहेगा आदमी ये ज़रूरतें, मगर इनमें से किसी भी चीज़ के लिए आदमी को पैदा नहीं किया गया। खाने के लिए पैदा किया गया हो ऐसा नहीं, पहनने के लिए पैदा किया गया हो ऐसा भी नहीं, रहने के लिए पैदा किया गया हो ऐसा भी नहीं, शादी के लिए पैदा किया गया हो ऐसा भी नहीं, उसके लिए पैदा नहीं किया गया। हमारी पैदाइश का मकसद दूसरा है, ये हमारी इस दुनिया में रहने की ज़रूरतें। जब तक रहेगा बंदा ज़रूरतें पेश आएंगी उसको। जब तक आदमी के पास गाड़ी है तो गाड़ी की कुछ ज़रूरतें हैं और गाड़ी का एक मकसद है। ज़रूरतें ये है कि उसके अंदर उसके तमाम पुर्जे सही हों, क्लच सही हो, ब्रेक सही हो, उसके पहियों में जो है ना हवा हो और ऑयल हो, उसमें पेट्रोल हो, गैस हो, जो भी चीज़ें उसमें हो वो सब होना चाहिए, ये ज़रूरतें हैं। जब गैस ख़त्म हो जाए तो फिर डाल देना, आयल ख़राब हो जाए तो फिर चेंज कर देना, हवा ख़त्म हो जाए या कि उसमें सुराख पड़ जाए तो उसको फिर बना लेना, मार वार लग गया है उसको सही कर लेना, ये ज़रूरतें हैं गाड़ी की। एक साहब ने गाड़ी ख़रीदी, अपने घर के सामने नई नई खरीद के ले आए, उसके बाद में जना वाला रोजाना सुबह उठ रहे हैं, उसको कपड़ा मार रहे हैं, पोछ के साफ सुथरा कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं, गैस डाल रहे हैं और उसको स्टार्ट कर रहे हैं, हम कभी ब्रेक चेक कर रहे हैं, कभी उसके जाने वाला कलर चेक कर रहे हैं, सब चीज़ सही नहीं है। तो एक आगे साहब ने कहा, यार तुम सुबह से शाम तक गाड़ी में यहाँ फुगाते रहते हो, फूकते रहते हो गैस में डाल के, फिर जब वो खाली हो जाता है फिर दूसरा डाल देते हो उसमें। तो कहेंगे तुमको क्या पता है, तभी तुमने कभी गाड़ी देखी नहीं, जब गाड़ी रखते हैं तो गैस डालनी पड़ती है, जब गाड़ी रखते हैं तो उस पर कपड़ा मारना पड़ता है, उसको धोना पड़ता है, उसमें ऑयल चेंज करना पड़ता है, यही करता रहता है। घर के सामने गाड़ी खड़ी हुई है, गैस डाल के फूकता रहता है, उसमें जलाता रहता है, उसको आन रखा हुआ है, जब ख़त्म हो जाती है फिर डाल देता है, चलाता उलाता नहीं गाड़ी, निकालता नहीं है बाहर। अरे भाई काहे के लिए थी ये, क्या कर रहे हो तुम, तो बोले जिसके पास गाड़ी होती है उसको ये करना पड़ता है। जिस मकसद के लिए है कि भाई मंजिल तय करो, ऑफिस जाओ, कहीं और जाओ, वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करता उस काम के लिए। तो मकसद और ज़रूरत में ये फ़र्क है। ये जितनी चीज़ें हमारे साथ लगी हुई हैं मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये ज़रूरतें हैं, मगर हम इसके लिए पैदा नहीं हुए, ये हमारा मकसद नहीं होता। तुम ये चीज़ें इस्तेमाल करके जी रहे ना, जी रहे, जी के क्या करना है, ज़िंदगी का है के लिए, जीने के लिए ज़िंदगी है, खाने पीने के लिए ज़िंदगी है, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक फ़र्क है जो हमारे जहनों में नहीं रहने की वजह से हमारा खाना हो गया कमाने के लिए और कमाना हो गया खाने के लिए। क्यों खा रहे हैं, तो यार अगर खाऊंगा नहीं तो कल जॉब को कैसे जाऊंगा। क्यों जॉब कर रहे हैं, तो बोले जॉब नहीं करूंगा तो खाऊंगा कैसे। कपड़े धो रहे हैं, क्यों धो रहे हैं? अरे यार कपड़े नहीं धोऊंगा तो पहनूंगा कैसे? सब पहनने के बाद कपड़े धोने की फिक्र है जो उतारे तो यही काम लगा हुआ है। इस बात को जान, अपना घर, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी जॉब, अपना काम, ये उन लोगों का काम है असल में जिन लोगों के नज़दीक ज़रूरत में और मकसद में फ़र्क नहीं है। और ये उन लोगों का काम है जिनको इस बात का इल्म नहीं दिया गया कि किस मकसद के लिए दुनिया में इंसान को अल्लाह पाक ने रखा है। और ये उन लोगों के पास है चीज़ जिनके पास वही का इल्म नहीं है, आसमान से इल्म नहीं उतरा उनके पास या उतरा हुआ इल्म पहुँचाने उन तक। हमारे पास आसमान का इल्म आया हुआ है, आसमान का इल्म महफूज है, इल्म वही महफूज है। उसमें हमें बार बार इस बात को और हिफाजत के साथ मुंतकिल किया गया और हम तक ये बात पहुंचा दी गई है कि तुमको अल्लाह पाक ने दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए रखा है, तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो, तुम मेरी बंदगी के लिए पैदा किए गए हो, मेरे मारिफत हासिल करने के लिए हो, मेरा काम करने के लिए हो, मेरी खिलाफत के लिए हो तुम। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ پاک کے اوامر کو، اللہ پاک کے حکموں کو دنیا میں نافذ کرنا، ان کی مرضی کو نافذ کرنا، ان کی نامرضی کو چلنے نہیں دینا۔ خلیفہ کے ہوتے ہوئے اللہ کی نامرضی دنیا میں چلی تو خلیفہ کی گردن ناپ دی جاتی۔ دنیا میں اگر ان کی اللہ کی نافرمانی ہو رہی، ہمیں خلیفہ بنا کے چھوڑا ہوا ہے، تو خلیفہ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کی کس کی زمین ہے، کس کی پراپرٹی ہے، آسمان کس کا ہے، زمین کس کی ہے، آکسیجن کس کا ہے، ہوائیں کس کی ہے، بارشیں کس کی ہیں، سورج کس کا ہے، چاند کس کا ہے، روشنی کس کی ہے، رات اور دن کس کے ہیں، اس کے تم خلیفہ ہو تو اس کی بات چلانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی نامرضی کو چلنے نہیں دینا۔ یہ مطلب ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کا، ای القص الدین و انا حی، دین میں کوئی کمی آئے اور میں زندہ بھی رہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا دین میں کمی آئے گی اور میں زندہ بھی رہوں گا، یا میں مر جاؤں گا یا دین میں کمی نہیں رہے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ان کی فہم دیکھیے کیسی تھی، ان کا علم کیسا تھا، ان کا ادراک کیسا تھا۔ اور یہ بھی کب فرمایا تھا آپ کو سب کو پتا ہے کہ زکات دینے والوں نے یہ کہا تھا کہ اب مسلمانوں کے پاس کافی پیسہ آ چکا ہے، ہم زکات نہیں دیں گے، مانعین زکات، زکات نہیں دیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زکات تو دینا پڑے، اللہ کا حکم ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ زکات دینے والے حضور کے زمانے میں اپنے مال زکات میں، جانور کی زکات میں جانور دیتے تھے اور اس کے ساتھ اس کی نکیل بھی دیتے تھے، اس کے ناک کی جو رسی ہوتی ہے، اونٹ کے ناک میں جو ڈالی جاتی ہے کنٹرول کرنے کے واسطے، اگر وہ رسی بھی دیتے تھے۔ اور آج میرے زمانے میں خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں خلیفہ ہوں، اگر میرے وقت میں وہ اونٹ تو دے دیں گے اور اس کی رسی نہیں دیں گے تو ان سے قتال کروں گا، گردن مار دوں گا۔ کس کی؟ مسلمانوں کی، غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی۔ زکات کو ماننے والے، زکات دینے والے غیر مسلم کا دعویٰ، غیر مسلم تھوڑی دے، ان مسلمانوں کی گردن مار دوں گا جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ ایون قص الدین و انا حی، تو خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک کے حکموں کو دنیا میں نافذ کرنا اور اپنے اوپر نافذ کرنا۔ تو بندگی میں کمال پیدا کرنا، اللہ کے بندے ہیں تو جیسے اللہ نے فرمایا ویسے رہو، اور جب جو کام دیا گیا ہے تب وہ کام کرو، اور اللہ پاک کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر لاؤ۔ اور اس میں اضافہ، اس ذمہ داری میں اضافہ جب ہو گیا میرے دوستو، جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمارے حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں پر بھی دین کی محنت تھی، خلافت کا کام تھا، دوسروں کو اللہ کی طرف بلانا خلافت کا حصہ ہوتا ہے، مگر اگر وہ لوگ نہ کرتے اس بات کو تو اور نبی آ جاتے تھے، چونکہ اس وقت کے نبی آخری نہیں ہوتے تھے، अगर उम्मत ना करती अपनी दीन की मेहनत के काम को, दीन की मेहनत की जिम्मेदार पिछली उम्मतें भी थी, दावत पिछली उम्मतों पर भी थी, हमारी उसमें खसूसियत नहीं है। दावत के मामले में खसूसियत नहीं है, दावत तो इंसानी फराइज में से। हमारी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि पिछली उम्मतें अगर दीन का काम नहीं करती तो इंसानों को संभालने के वास्ते, हिदायत देने के वास्ते दूसरे नबी आ जाते थे, क्योंकि पिछली उम्मतों के जो नबी होते थे वो आखिरी नबी नहीं होते थे, नबूवत का सिलसिला जारी था। हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबियीन हैं, आखिरी नबी हैं। अगर इंसानों के अंदर दीन की मेहनत न हो तो भी नबी नहीं आएंगे, और जब नबी नहीं आएंगे तो बेदीनी बढ़ती चली जाएगी। तो जितनी ज्यादा बेदीनी बढ़ती चली जाएगी उतनी ज्यादा दीनदारों की गर्दन नापी जाएगी। जो जितना दीनदार है वो उतना ज्यादा पकड़ में आएगा, क्योंकि वो समझ रहा अपने को दीनदार है नहीं। दीनदार तो उसको बोलेंगे जैसे वो बोल रहे हैं वैसा करना, एक काम कर रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं, मेहनत करने को बोल रहे हैं नहीं कर रहे, तो दीनदार कौन हो? बाप का बेटा वो फरमा बरदार है जो बाप की सब बातें माने, आधी बात मान रहा आधी नहीं मान रहा तो कैसे फरमा बरदारों में शुमार होता हूँ, ना फरमानों में शुमार होता। रोटी में तुम्हारे को खिला दूंगा लेकिन शादी अपनी मर्जी से करूंगा, तो अब क्या बोलते? फरमा बरदार है बोलते, हालांकि रोटी का काम कर रहा है, खाना खिला दे, चाय ला दे, दवा दे दे, बोले खाना तो मैं खिला दूंगा, चाय नहीं पिलाता, दवा नहीं देता, क्या आप क्या बोलोगे? फरमा बरदार बोलोगे उसको। तो वो दीनदार तबका पकड़ में आता है दीन की मेहनत न करने पर, जो कि दीनदार है। क्यों? इस वजह से इसने अपने दीन के हिस्से को आधा कैसे कर लिया, कुछ का कुछ को समझ रहा दीन, कुछ को नहीं समझ रहा था। और ये कैसे मालूम हुआ? ये हदीस शरीफ में है, अल्लाहु इला जिब्रील अलैहि सलाम अनिकले मदीना कदा व कदा, जिब्रील सलाम की तरफ अल्लाह पाक ने वही भेजी, हदीस शरीफ है, अब कमा कर सलाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने वही भेजी कि फला शहर को पलट दो, पिछले लोगों के वाकयात में से ये बात, फला बस्ती को ख़त्म करो, अनकलिप पलट दो उसको। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, बस्ती का जायज़ा लिया तो वहाँ एक बहुत ही नेक मुत्तकी आदमी था, इतना ज़्यादा नेक मुत्तकी कि जिब्राईल भी मुतासिर हो गए। قال يا ربي ان فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عين, कहने लगे परवरदिगार उस बस्ती के अंदर एक ऐसा बंदा है, आप तो जानते ही हैं, عبدك فلان आपका बंदा फलाना, वो कभी नाफरमानी नहीं करा, तो नाफरमानी जानते ही नहीं समझो, ऐसा है हमेशा फरमाबरदारी में लगा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जाओ और पहले उसका घर पलट दो, बाद में पूरी बस्ती का पलट दो। قال اقلبها عليه وعليهم, हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं कि पहले उसको घर को पलटो फिर पूरी बस्ती को पलट दो। तो बड़ा नेक आदमी था, मुत्तकी आदमी था, परहेजगार आदमी था। फरमाया कि उस पर इतनी नाराजगी की वजह यह है कि ये तो जानते ही नहीं, ये तो जानता है, मेरी नाफरमानी को होता हुआ देख के इस पर तासुर ही नहीं आ रहा कुछ। भाई नवजहु लम यतमअर फिया कत्तो, इसलिए कि उसका चेहरा कभी मेरी वजह से शिकन आलूद नहीं हुआ, नाफरमानियां होती भी देख रहा है और चेहरे पे शिकन तक नहीं, गिरानी तक नहीं हो रही, बोलना तक नहीं चाहता, समझाना तक नहीं चाहता, बताना तक नहीं चाहता, ये क्या बात हुई? ये कौन सा दीन है? ये दीनदारी नहीं होती कि मेरे बंदे वो जहन्नम में जा रहे हैं और इसको कोई फिक्र नहीं। आपकी औलाद जो है पानी में, किसी की औलाद पानी में डूब रही हो और किसी बंदे के बारे में आपको पता हो, आपका चहिता भी हो, आपसे दोस्ती भी हो, उसकी आपकी तरफ से अपॉइंट किया हुआ भी हो वहाँ पे ठहरने के वास्ते पानी के पास, और आपको पता चला कि उसने उसको डूबते हुए देख लिया, बचाया नहीं, तो जो बच्चे की मौत का असर है वो तो हो गई होगा, लेकिन इस बंदे पे कितना गुस्सा आएगा? ये कैसा आदमी था भाई, ये कैसे इसने जाप की? ये कैसी जिम्मेदारी है, ये कैसी दोस्ती है अपने के साथ में। चलो किसी और बंदे को भी इसमें खामोशी इख्तियार नहीं, मेरे मेरा ही अपॉइंट किया हुआ बंदा आदमी है और मेरा दोस्त भी है और मेरा पहचानत वाला भी है और हमारी अपनी अच्छी खासी आपस में बनती भी है और मेरा बच्चा डूब रहा था, इसने कोई फिक्र तक नहीं की उसकी। जितने ज्यादा ताल्लुकात बड़े हुए होंगे उतने ज्यादा नाराजगी के वजूहात जमा हो जाए। हम मुसलमानों का जो मौकफ है वो इससे वाज़ह होता है मेरे दोस्त। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। कितनी भी बेहूदगी बदतमीजी दुनिया के अंदर बढ़ती चली जाए फिर भी कोई नबी नहीं आएगा। जिम्मेदारी किस पर बढ़ती चली जाएगी? जिम्मेदारी उन पर बढ़ती चली जाएगी जिनके पास दीन की फहम है, दीन का शऊर है, मस्जिदों में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से डरते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, आखिरत की फिक्र रखते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती चली जाएगी। तो हुजूर की उम्मत में होने की वजह से मेरे दोस्तों फजीलत ज़्यादा है, सवाब ज़्यादा है, मर्तबा ज़्यादा है, अल्लाह के यहाँ इनामात ज़्यादा हैं, काम भी ज़्यादा है। तो अपनी मसरूफियतों के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी मशगूलियत के साथ हमें दीन की मेहनत को करना है। यहाँ बहुत से लोगों को ये खलजान हो सकता है कि दीन की मेहनत नहीं है हमारे जिम्मे, इसको कंफर्म कर लो, ये हमारा फर्ज है। ये समझ लें, पूछ लें कि भाई दीन की मेहनत ऐसा है कि अगर कोई करेगा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो ये बेवकूफ़ों का काम समझ, इनको काम कुछ भी नहीं है, बेस्तर उठा उठा के फिरते रहते हैं, उल्लू के पट्टे हैं, ये हैं वो हैं, बात तो गाली भी दे देते ना। बाद ऐसे लोग हैं जिनके पास ये है कि अच्छा काम तो लगता है, बस करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। और ये उन लोगों का काम है जिनके पास टाइम है, फुर्सत है, काम काज कुछ भी नहीं है, पैसे पैसे बहुत होंगे, कोई और पैसा इनको देता होगा, ये जॉब फिलहाल नहीं होगा, या बीवी बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, शायद ये उनका काम है, या ऐसी ही बात है या कुछ और बात है, ये समझना तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आया दीन की मेहनत हम में से हर फर्द पर है या नहीं है। इस सिचुएशन में जिससे मैं गुजर रहा हूँ इस वक्त, इस कंडीशन में जिससे मैं गुजर रहा हूँ इस वक्त, मेरी अपनी मशगूलियत की नौइयत, मेरे अपने ऊपर कर्जों की नौइयत, मेरी अपनी जिम्मेदारियों की नौइयत, उस सब के साथ में आया दीन की मेहनत करना मेरे जिम्मे है या नहीं है, ये तहकीक करना कुरान हदीस के जरिए मालूम करना। बाद हम में से ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों जो बार बार सुनने की वजह से इस बात को समझते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो पूरे दीन के पूरे मुसलमानों की जिम्मेदारी है, सब मुसलमानों की जिम्मेदारी, जाहिलों की भी आलिमों की भी। जो आदमी इस्लाम में नहीं है उस पर जबर नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन, जो आदमी इस्लाम में नहीं है उस पर जबर नहीं है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, जहन्नम में जाओ। जो इस्लाम में है उस पर जबर है, जबरदस्ती है उस पर, जो मुसलमान है फिर क्यों नहीं पढ़ता भाई नमाज, फिर क्यों नहीं रखता रोजा, फिर क्यों नहीं देता जकात, फिर क्यों नहीं हज करता, फिर हलाल हराम में फर्क क्यों नहीं करता, ये जिम्मेदारी है, फर्ज है ये, और जबर है ये, इख्तियार नहीं है इसमें कि भाई वो अगर नहीं कहेगा, नहीं करेगा तो खुद भुगतेगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जबरदस्ती ये है कि उसको मजबूर करो, जब वो मानता है तो उस पर प्रेशर डालो, उस पर उसको दबाव में लाओ, उसको मजबूर करो। ये कैसे समझ में आती है बात, ये एक बहुत सी चीज़ों से समझ सकते हैं लेकिन एक ख़ास हुक्म से भी हम समझ सकते हैं। इस्लामी हुकूमत में अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ा तो उसके लिए क्या हुक्म है? क्या ये है कि भाई वो खुद अपनी कब्र में जवाब देने वाला है, अपने अमल का जिम्मेदार है? इस्लामी हुकूमत में क्या कानून है, शरीयत का क्या कानून है? शरीयत का कानून यह है कि ऐसे आदमी को जेल में डाल दिया जाए जो नमाज नहीं पढ़ा बल्कि मालूम हुआ, उसके लिए जेल है शरीयत इस्लाम। और जेल में जाने के बाद में भी अगर नमाज नहीं शुरू किया, नहीं पढ़ा, उसका मर्डर है, कत्ल है। और ये चारों इमामों के पास है, सबकी तहकीक यही है, कुछ ऐसा बोलते हैं कुछ ऐसा नहीं बोलते, वैसा नहीं है, सबके पास यही उसूल है कि उसको जेल में डालो। और जेल में डालो तो इमाम अबू हनीफा का कौल है, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो हनाबिला के इमामों में से है, उन्होंने फरमाया कि उसको जेल में मत डालो, जेल में डालने से पहले कत्ल कर दो, ये सड़ी हुई प्याज है दूसरों को सड़ा देगा, ये एक खराब मछली है दूसरों को खराब करेगी, इसको थोड़ा सा भी ढील दोगे आप तो दूसरे आदमी का नफ्स जो है ना उसको ढील ले आएगा, छोड़ो ही मत उसको। अहनाब के पास ये है कि पहले जेल में डालो, फिर भी तौबा ना करे तो फिर उसको कत्ल करो, अगर इख्तियार है तो जेल में क्यों भाई, ये कोई रोजा नहीं रख रहा जेल में डाल दो। ये जो ये हुक्म बताता है कि इस्लाम लाने के बाद में जब बंदगी अल्लाह पाक की आदमी कबूल कर लिया, आखिरत की कामयाबी के लिए अपने को आमादा कर लिया, जन्नत के लिए अपना इस्तेहकाम जता रहा है ईमान लाने की वजह से, तो फिर इस बात का पाबंद होगा वो कि दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्म को नाफिज़ करे। तो अगर कोई आदमी नहीं कर रहा उस चीज़ को तो जो लोग पाबंद हैं उनकी जिम्मेदारी होती है उसको दबाव में लेने की, प्रेशर डालने की, अगर उनके पास पावर है तो पावर के जरिए से कुव्वत नाफिज़ा कहते हैं उसको, और अगर पावर नहीं है तो अर्ज़ो दावा, उसके सामने दावत पेश करने के जरिए से। इसलिए बिलखसूस पूरी इंसानियत के अलावा बिलखसूस दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं अगर वो दीन पर अमल नहीं करते हैं और उनके अंदर से दीन की तलब और अजमत आखिरत की फिक्र ये सब निकल चुकी है, वो भूल चुके हैं, तो जिन मुसलमानों को याद है वो भूले हुए नहीं है, वो नमाज पढ़ते हैं, वो पाबंद हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन तक जाएं, जितनी ज़रूरत है उतने एतबार से दीनदारों को उनकी तरफ जाना है, पाँच है तो पाँच तक जाओ, 5,000 है तो 5,000 तक जाओ, 5,00,000 है तो 5,00,000 तक जाओ, 5,00,00,000 है तो 5,00,00,000 तक जाओ, बेतलबों तक तालिबीन का पहुंचना, बेतलबों तक पहुंचना ज़रूरी है, बेगरज होकर पहुंचना ज़रूरी है, इसको खुरूज कहते हैं, इसको दावत कहते हैं कि हम खुद जाके उनको बुलाएं, ये एक जिम्मेदारी है मेरे दोस्त, ये है हर मुसलमान के जिम्मे है, हर मसरूफियत के साथ है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सूरत हाल हमारे सामने जाहिर फरमा दी कि तुम इन तमाम चीज़ों के साथ में एडजस्ट कर सकते हो, वरना तो अगर ये शक्ल जो तबलीगी जमात के नाम से जो शक्ल इस वक्त पूरी दुनिया में है ये ना होती तो क्या हमारे जिम्मे ना होता ये काम, फिर भी होता, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो इस वजह से नहीं है कि आपके पास कोई सेटअप है या नहीं है, आपका फ़र्ज है बाइज़्ज़त मुसलमान होने, अगर ना होती तो भी ये जिम्मेदारी थी, बताओ मेरे अकेले के ऊपर ये समझ आती कि भाई कुरान हदीस में ये जिम्मेदारी मुझ पर है तो मैं क्या कर लेता, किसके पास जाता, कहाँ सफ़र करता, कहाँ ठहरता, किसको बुलाता, किसको दावत देता, और आज की सूरत हाल तो ये है कि अपनी बीवी को बोलना मुश्किल है, अपने बच्चों को बोलना मुश्किल है, बच्चे हमको बोलते हैं, हुज़ूर ने फरमाया ना कि क़यामत के करीब जो है ना माँ बाप बच्चे हो जाएंगे और बच्चे माँ बाप हो जाएंगे, पहले ये था कि बच्चा पूछता था अब्बा ऐसा कर लूँ, अब अब्बा पूछता है कि बेटे ऐसा कर लूँ, अंतलिद अमत रब्बतहा बांधी अपने मालिक को जनेगी, उसकी तफसीर में ये जुमला भी है कि क़यामत के करीब औलाद जो है वो माँ बाप हो जाएगी और माँ बाप जो है वो औलाद हो जाएंगे, हाकिम वो बन जाएंगे महकुम ये हो जाएंगे, मालिक वो बन जाएंगे ममलूक ये हो जाएंगे, काना ममलूक की फाजा मालिक की इन हाजा मिन अजीब ज़मन, ज़माने की अजायबात में से ये है कि जो मालिक था वो ममलूक हो गया, जो ममलूक था वो मालिक हो गया, मैं तो अपने बच्चों को नहीं बोल सक रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को नहीं बोल सकता, अपने भाई को नहीं बोल सकता, हिम्मत ही नहीं होती, सलीका भी नहीं है, नॉलेज भी वैसी नहीं है, खुद में इतना मुत्तकी परहेजगार भी नहीं हूँ, मैं खुद ही दीनदार नहीं हूँ, मैं कहाँ से करूँगा, तो उसकी वजह से अल्लाह पाक ने कितना बड़ा फजल फरमा दिया हुआ है कि अल्लाह पाक ने एक इज्तमाही रंग इसका जाहिर फरमा दिया, जमाती शक्ल दे दी, तो उनको कुछ नहीं करना है ज्वाइन हो जाना, और उसको इतना आसान किया कि हर जगह मुयसर कर दी, हर सतह का आदमी कर सकता है, देर से देर के लिए जाओ, थोड़े से वक्त के लिए भी जाओ, पैसे ज़्यादा खर्च कर सकते हो, पैसे थोड़े खर्च कर सकते हो, बहुत मशगूल हो तो भी, ज़्यादा मशगूल नहीं है, फुर्सत है तुम्हारे पास तो, सब के लिए अल्लाह पाक ने सूरत ज़ाहिर फरमाई, क्यों इस वास्ते कि उम्मत मुस्लिमा की बाहिशत मजमू ये जिम्मेदारी है, तो अल्लाह पाक अपने अफ़ज़ाल में से अपनी मेहरबानियों में से मेहरबानी ज़ाहिर फरमाकर ये शक्ल हमारे सामने कर, कभी ऐसा होता है कि हम इसकी ज़रूरत नहीं समझते, करे तो सवाब है वरना तो कोई बात नहीं, और कभी ऐसा होता है कि हम ज़रूरत समझते हैं लेकिन अपने को मजबूर समझते हैं, यार सब कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरे हालात नहीं मालूम है लोगों को, मेरे बुजुर्गों, हो सकता है कि वाकई मजबूरी हो और ये 1% चांस है, 99 नहीं है। फिर क्या है ये? फिर ये है कि कुरान पाक में यह है कि शैतान तुम्हें मजबूरी दिखाता है, होती नहीं है। तुम समझते हो कि तुम नहीं कर सकते हो? इतने लोग इस वक्त जमातों में फिर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दीन के लिए, उन सब की फीलिंग भी पहले ऐसी थी, उन सब की फीलिंग भी। बड़े बड़े तुजार, बड़े मालदार लोग, बड़े फनकार लोग, बड़े डॉक्टर्स, ऐसे लोग देखने में आते हैं जिसकी तो देखिए, यहाँ के शिकागो के एक डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे, वो निज़ामुद्दीन गए हुए थे तो वहाँ उन्होंने एक डॉक्टर साहब को देखा, वो तहारत मरकज़ के जो है ना, वो तहारत खाने साफ कर रहे हैं रात में तहज्जुद के वक्त। इत्तेफाक से ये तहज्जुद के लिए उठे तो देखा उस बंदे को कि वो सफाइयाँ कर रहा है अपने खुशी से। कुछ जाना पहचाना सा चारा सा लगता है, तो वो करीब हुए उनसे तो पहचान लिया उनको। बता रहे थे कि ये वो बंदा है कि जिस बंदे से मुलाकात के लिए डॉक्टरों को एक एक महीना पहले टाइम लेना पड़ता है। टॉप का है, वर्ल्ड के टॉप के डॉक्टरों में से वो है, वो कहीं का बता रहे थे। वो आया हुआ है 4 महीने के, जब उसके पास गए थे जमात वाले, कहने लगे तुम किसके पास आए भाई, इसके बाद 1 मिनट की फुर्सत नहीं है उसके पास है। इसको दिन में इतनी सर्जरियां करनी पड़ती हैं, उसके पास आए। जो इतने काल पर रहता सुबह से शाम तक, तुम उसके पास आए। मैं दीन की मैं खिदमत नहीं कर रहा हूँ मखलूक की, इस फहम का आदमी था। मगर आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर हुआ, फिर पता चला कि ये तो कोई चीज़ नहीं है कि मैं इसके साथ वक्त नहीं निकाल सकता। वक्त उसने निकाल दिया और वो 4 महीने के लिए गया हुआ था। 4 महीने के लिए ऐसे लोग, ऐसी मशगूलियत वाले लोग जमातों में फिर रहे थे। मैं और आप तो मेरे दोस्तों इससे बहुत कम हालत पर हैं। तो हम ये जो समझते हैं कि मैं इस नहीं कर सकता हूं, ये हो सकता है कि सही हो। जिम्मेदारों के सामने अपनी हालत रखने से पता चलता है कि भाई देखो मेरी ये कंडीशन है, तुम लोग फैसला करो कि मुझे क्या करना चाहिए। इसमें वाकईतन माँ है, बूढ़ी माँ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई दवा देने वाला नहीं है, कोई दवा लाने वाला नहीं है, कोई खिदमत करने वाला नहीं है। अगर ये जाएगा तो ये मर जाएगी और कोई इसको पूछने वाला नहीं होगा। तो कौन होगा मेरे दोस्त जो कहेगा कि भाई तू दीन की मेहनत के लिए जा, तू सफ़र कर। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबैसे करनी को आने नहीं दिया अपने से मिलने के लिए। सारी दुनिया जानती है जरीर सबसे अफजल ताबईन है, सहाबी बन सकते थे क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं इसलिए सहाबी नहीं बने। क्यों? माँ बूढ़ी थी, खिदमत के वास्ते कोई दूसरा था नहीं, छोड़ के आ नहीं सकते थे। उसने फरमाया कि आने की जरूरत नहीं, तुम रहो। इत्तबा की बरकत से सहाबी नहीं बनने के बावजूद अल्लाह पाक ने वो मकाम उनको दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि उवैस करनी से जब मुलाकात हो तो उम्मत के लिए दुआ कराना, और दुआ करवाई गई। अब अंदाजा फरमाई, तो अगर वाकईतन किसी को मजबूरी हो तो उसको इस्तिस्ना होगा, उसको एक्सेप्शन होगा। लेकिन वाकईतन मजबूरी है या नहीं है, ये शैतान हमें दिखा रहा है, इसको जानना आसान नहीं होता। ये थोड़ी जुरत से है इसका ताल्लुक, थोड़ा इकदाम करने से है इसका ताल्लुक, अपने हकीकी हालात सामने जिम्मेदारों के सामने रख के मशवरा करने से है इसका ताल्लुक। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि हम कर सकते थे, हम करना चाहते हैं लेकिन हमारी मजबूरियों से नहीं कर रहे। सारे ही लोग ऐसे ही महसूस करते थे कि 3 दिन निकलना उनके लिए आसान नहीं था। 3 दिन तो बहुत मुश्किल होती है निकलने में, वीकेंड में जाना किसी के लिए आसान नहीं दिखता था। लेकिन आहिस्ता 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 दुनिया के सारे काम हैं, दुनिया में अल्लाह पाक तरक्की भी अता फरमा रहा है और उसके साथ साथ दीन के काम फिर भी लग गए हैं। तो ये दोस्तों मेरी बात ऐसी बात नहीं है कि हम लोग दीन की मेहनत नहीं कर सकते। जिस जिम्मेदारी को अल्लाह ने इस उम्मत को लगाया है, ज़रूर उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो जिम्मेदारी निभा सके। अगर वो जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता तो अल्लाह पाक नहीं लगाता काम वो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह पाक जब लगा रहे हैं बंदा कर सकता है। जो महसूस कर रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मजबूरी की नौइयत क्या है वो एनालाइज करने नहीं आ रहा उसको, वो अपने थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, अल्लाह पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, अल्लाह के ज़ात आली पे भरोसा करके आगे बढ़ना होगा, अपने हालात को मैनेज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, अल्लाह पाक रास्ते बना देगा उसको। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जिंदगी भर में जाने से पहले अल्लाह पाक के यहाँ पता नहीं कब हमारी जिंदगी का खात्मा हो और मौत का वक्त हमें नहीं पता है, मुतय्यन है अगरचे, हमें नहीं मालूम कि कितना वक्त लेकर हम आए, अब हमारी जेब में कितने पैसे बाकी रहेंगे हमें ही नहीं मालूम, खर्चा कितने हो गए वो मालूम है, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 55 के हो गए, 40 के हो गए, लाए कितने, 100 लाए, 80 लाए, 60 लाए, 55 लाए, 50 के हो गए, 51 ही लाए, एक ही बचा हुआ है पता भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि अपने कपड़े खरीदने के लिए आदमी बाजार जा रहा होता है जबकि कफन का कपड़ा भी उसी बाजार में आया हुआ होता है उसकी, अपने कपड़े खरीदने के लिए बाजार जा रहा होता है जबकि कफन का कपड़ा भी आया हुआ होता है, शादी का इंतजाम कर रहा होता है जबकि कफन उसका बाजार में आ चुका होता है, तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अपनी इस आरजी जिंदगी मुख्तसर सी जिंदगी में जो हमें काम करना है, जो जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने हमें दी है, हम उस जिम्मेदारी को हिम्मत से करेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात आली से उम्मीद है कि अल्लाह के कामिल बंदों में अल्लाह पाक हमें शामिल फरमाएगा। मेहनत करना हमारा काम है, जब मेहनत और मुस्तैदी के साथ में लगे रहेंगे, अगर हमारी कमी कमजोरियां रह भी जाएंगी तो अल्लाह पाक उसको पूरा कर देंगे। जो आदमी मेहनत में लग जाता है उसकी कमी को पूरा कर दिया जाता है। जैसे एक बच्चा हिफ्ज़ कर रहा था, हिफ्ज़ करते करते उसका इंतकाल हो गया, थोड़े ही पारे उसने किए थे, हदीस शरीफ में आता है कि उसको हाफिज उठाया जाएगा, उसकी कमी पूरी कर दी जाएगी। जो आदमी हज के लिए जा रहा था, जाते जाते एक आदमी का इंतकाल हो गया तो उसको हाजी उठाया जाएगा, उसको हज का पूरा सवाब दिया जाएगा और मकबूल हज का दिया जाएगा और हर साल हज का दिया जाएगा और कियामत तक दिया जाएगा, आप अंदाजा फरमाएं। लेकिन जो नहीं गया हज को उसको थोड़ा ही ऐसा, जो हज को नहीं गया वैसे मर गया मुसलमान, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये थोड़ी है कि उसको हर साल हज का सवाब दिया जाएगा, उसके लिए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो तो मुसलमान भी नहीं मरेगा। जो हज कर सकता हो और हज ना करे वो या यहूदी होकर मरेगा या ईसाई होकर मरेगा, फलियमुत इंशा यहूदी या औ नसरानी, वो चाहिए कि मरे यहूदी होकर या नसरानी होकर, उसका तो सोए खातिमा का अंदेशा लगा हुआ है कि खातिमा भी बिलखैर होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो हज को जा रहा था और हज से पहले रह गया, अल्लाह पाक उसको हाजी बना दिया। जो हाफिज नहीं था, हिफ्ज नहीं कर रहा, उसको कोई हिफ्ज का सवाब नहीं, लेकिन जो हिफ्ज शुरू कर चुका है, नहीं कर सका, मौत आ गई, अल्लाह पाक उसको हाफिज बना देगा, उठा देगा। ऐसे जो आदमी अपने ईमान को कामिल करने के लिए, दीन को कामिल करने के लिए, अल्लाह पाक की बंदगी पूरी करने के लिए लग गया मेहनत में, इस्लाह में लग गया, अपनी कोशिश में लग गया, दीन की जद्दोजहद में लग गया, जो कुछ कमी कोताही रहेगी अल्लाह पाक उसको पूरा फरमा देगा। लेकिन जो लगा ही नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए, वो जिम्मेदारी जैसे कि वैसे उसके सर पे रह जाएगी। अगर हमने किसी तरीके पर जो छोटी मोटी हमसे होती है पाबंदियाँ वो कर लें और दीन की मेहनत में हमने हिस्सा नहीं लिया, मेरे दोस्तों ये इतना बड़ा हमारा नुकसान है कि उस साइड की जो कमी है वो पूरी नहीं हो सकेगी और उसकी मसूलियत, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही वो हमारे सर पर आ जाएगी। इसलिए ये बहुत अहम है कि हम और आप सब मिलके ये तय करें, पहले जहन बना लें कि हाँ भाई ये काम तो करने का है, मुझे और आपको सबको करना ही करना है, और हम तो ये अज़्म करें, जज्बा बनाएं कि अल्लाह इतनी नियमतें आपने अता फरमाई, मैं तो अपनी ज़िंदगी में दुनिया के कोने कोने में जाकर एक एक इंसान तक आपकी बड़ाई और अजमत को सुना दूँगा और एक एक इंसान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ मुतवज्जे करूँगा। जब आदमी अज़्म करता है और जज्बा बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नीयत के एतबार से उसको हिम्मत भी अता फरमाता है, वसाइल भी अता फरमाता है, इस्तेमाल भी फरमा लेता है उसको, और उसकी बरकत से इसके दीन में कमाल ले आता है। क्योंकि हम अपने दीन के एतबार से कितने नाकिस हैं, बहुत नाकिस हैं, ईमान में नाकिस हैं, इस्लाम में नाकिस हैं, पाबंदियों में नाकिस हैं, नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में नक्स है, रोज़ा रखते हैं तो रोज़े में नक्स है, हज करते हैं तो हज में नक्स है, ज़कात देते हैं तो ज़कात में, कौन सा काम हमारा सही है? जो हम बेदीनी में कर, बेदीनी के जो काम करते हैं वो तो है ही बेदीनी के, जो गुनाह हमसे होते हैं, जो दीनदारी हमसे होती है वो दीनदारी भी कैसी होती है? हज़रत मरहूम ने फरमाया ना कि इस्तग़फ़ार बर इस्तग़फ़ार माँ, जो हमारा इस्तग़फ़ार होता है वो काबिल इस्तग़फ़ार होता है, जिसमें हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं वो खुद भी अल्लाह से माफ़ी मांगने की चीज़ है। ये कोई माफ़ी मांगने का तरीका है? आपसे बोल रहे हैं कि आप सॉरी बोल दो, एक बच्चा दूसरा बच्चे को सॉरी बोल दो तो इधर मुंह करके बोला सारी, अब क्या बोलेंगे? ये कोई तरीका है बोलने का? सामने तो रख, गफलत के साथ में इस्तग़फ़ार हम करते हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ मुंह ही नहीं है अपना, मुंह तो हमारा किसी और चीज़ की तरफ है, यानी गफलत के साथ है। तो हमारे इस्तगफार पर इस्तगफार है, तो हमारी नमाज पर इस्तगफार का क्या हाल होगा, हमारे रोजों पर इस्तगफार का क्या हाल होगा, ऐसे हमारे आमाल हैं। लेकिन अगर हम दीन की मेहनत में मेरे दोस्तों लगेंगे और अपनी फिक्र भी रखेंगे साथ ही साथ, अल्लाह तबारक व तआला हमको अपनी जाती जो दीनदारी है उसमें भी कमाल नसीब फरमाएगा, और दीनी जो जिम्मेदारियां हैं दूसरी वो सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला अदा करने वालों में हमको शामिल फरमा लेगा। अगरचे कि हम उनको कोताहियों के साथ में भी करें, लेकिन कर रहे होंगे कुछ, मेहनत करने का ये फ़ायदा है, मेहनत में ज्वाइन होने का ये फ़ायदा है। इस वजह से बुजुर्गों ने हमारे ये फरमाया कि इस मुल्क में खुसूसियत के साथ अगर तुम दीन की मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें इस मुल्क में रहना जायज़ है वरना हराम है। मौलाना अली मियां नकवी रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ शिकागो आए थे 80 में, MCC में उन्होंने बयान में ये बात कही। मैं कहा कि मैं आप लोगों को ये फतवा दे के जाता हूँ, बताता हूँ, हालात को मैं जानता हूँ, पूरी दुनिया में फिरता रहता हूँ, मुझे अंदाज़ा है इस बात का, अगर तुम यहाँ रहकर दीन की मेहनत करोगे तो तुम्हारे लिए यहाँ रहना जायज़ है वरना यहाँ रहना हराम है। आखिर कुछ देखा, कुछ जानते हो लोग कुरान हदीस के पढ़ने वाले मायने। हम अगर दीन की मेहनत नहीं करेंगे तो अपना दीन ही नहीं बचेगा, अपनी औलाद को तो हम वैसे ही लूज़ कर देंगे, आने वाले जनरेशन को तो हम ख़त्म ही कर देंगे। वो कहेंगे ठीक है तुम लोग नमाज पढ़ते रहो, तुम्हारे आने वाली नस्ल तो हमारी गोद में, जैसे ये लोग बोलते हैं ना वैसे सेम अपनी आंखों से भी हम देख रहे हैं। और जितने ज़्यादा गफलत करते जाएंगे उतने ज़्यादा गंदे हालात सामने आते जाएंगे। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तो भला हम क्या संभालेंगे, अपना अपने करीब की जिम्मेदारी तक हमसे पूरी नहीं हो रही है। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जो होके और अल्लाह ही से तौफीक मांग के और अपने गुनाहों के ऊपर इस्तगफार करते हुए अल्लाह पाक से मदद मांगनी है, हिम्मत करनी है, और हम ये तय करना है कि हमको दीन की मेहनत करना है, हम दीन की मेहनत में हिस्सा लेंगे, और अपनी बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ना है, अपनी जॉब को भी नहीं छोड़ना है, अपने कारोबार को भी नहीं छोड़ना है, अपनी दुनियादारी को भी नहीं छोड़ना है। जो हमारी ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं, और इस्लाम उसको कैसे मना करेगा। इस्लाम तो उसमें कभी भी दुनिया को छोड़ने को नहीं कहा, उसने दुनिया के साथ साथ दीन का काम करने को कहा है। तो हम दुनिया भी ज़रूरी है दीन भी ज़रूरी है बोलते जा रहे हैं, खाली दुनिया का करते जा रहे हैं, भाई ये तो बेईमानी है, ये नहीं होने का है। जैसे ये ज़रूरी है ये कर रहे हैं, वो ज़रूरी है वो भी करो। इसलिए दीन की मेहनत करना हर मुसलमान के ज़िम्मे है, खवास के, आवाम के, उलमा के, गैर उलमा के, अमीर के, गरीब के, लीगल के, इलीगल के, मर्दों के और औरतों के। कुरान पाक में अभी आयत में पढ़ के आया वहाँ पर मस्तूरात में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, कुरान पाक में और मर्दों को हुक्म देने के बाद औरतों को नहीं दिया जाता, लेकिन ये स्पेशल जगह है, एक तो जगह जहाँ पर मर्द और औरत को अलग अलग हुक्म बयान करके हुक्म दिया गया। फरमाया मोमिन आद और मोमिन औरतें ये आपस में एक दूसरे के वली हैं, वो अमर बिलमारूफ करते हैं, नहीं अनिल मुनकर करते हैं, नमाज अदा कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा। वल्मुमिनून वल्मुमिनात बअदुहुम औलिया बअद। और इसके बरखिलाफ़ एक सूरत भी बयान फरमाई, फरमाया कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ये वो लोग हैं जो बुराई का हुक्म करते हैं और भलाई से रोकते हैं। बुराई की तलखीन करना, बुराई को चलाना, बददीनी को चलाना, बददीनी की तरगीब देना, दीनदारों को ये कि उनको डिवेल्यू करना, उनकी बेइज्जती करना, उनको ताने देना, उनकी औलाद की अगर वो दीनी तालीम और तरबियत की फिक्र कर रहे हैं तो उसकी मुखालफत करना, ये बेदीनी का ही हुक्म देना है। बेदीनी का हुक्म करते हैं और दीन से दीनदारी से मना करते हैं। अमरुन बिल मुनकर वयनहुन अनिल मारूफ वयक्बिदून अयदीहुम, और अपने हाथों को बंद करते हैं खर्च करने से अल्लाह के रास्ते में। नसुल्लाह फनसियहुम, अल्लाह पाक को उन्होंने भुला दिया, अल्लाह ने उनको भुला दिया। उलाई को हुमुल फासिकून, ये लोग फासिक, वो लोग कामयाब हैं, ये लोग फासिक, वो हिदायत याफ्ता हैं, ये लोग हिदायत से हटे हुए हैं। तो इस वजह से मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी यह है कि दीन की मेहनत में हम हिस्सा लें। कैसे हिस्सा लेंगे, अल्लाह पाक उसकी शक्लें हमारे सामने लाते रहते हैं। अभी एक बहुत बेहतरीन शक्ल मेरे दोस्तों हमारे सामने करीब आ रही है कि इज्तिमा जो है हमारे शहर के अंदर तय हुआ है 28, 29, 30 को भी इसी महीने की, यानी अगले हफ्ते में, अगले जुमा हफ्ता इतवार को। तो उसमें उस मौके से हमको कुछ प्रोग्राम बना लेना चाहिए कि थोड़ा वक्त हमारा उससे हो जाए अल्लाह के रास्ते में, 40 दिन के लिए हो जाए, 40 दिन नहीं हो सकते तो 20 दिन के लिए हो जाए, 4 महीने के लिए हो जाए, कम के लिए, ज़्यादा के लिए, अपनी सहूलत के अतबार से थोड़ा वक्त अल्लाह के रास्ते में लग जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों हमारी किस्मत चमक जाएगी, अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी, हालात में भी अल्लाह पाक की मदद होगी, और आखिरत के अंदर तो हमको अल्लाह पाक की मदद की सख्त तरीन ज़रूरत है। जहाँ ना कोई असबाब है, ना कोई वसाइल है, सिर्फ नतीजा ही नतीजा यहाँ पर है। वहाँ पर वाणी है कि भाई खोदो और काम करो, हैंड टू माउथ है, मेहनत कर लो, रोज का रोज जाके पैसे बना लो, जरूरत के पैसे बना लो, वैसा नहीं है वहां। तो यहां से जो लेके गए वही है वहां पे, वहां कमाने का मौका नहीं है। आज अमल है, बदला नहीं है, कल सिर्फ बदला है और अमल नहीं है, कल सिर्फ बदला है और अमल नहीं है, और वो सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में है। जैसे अमल बंदा लेके जाएगा वैसे नतीजा सामने आएगा। उसके लिए जखीरा मेरे दोस्तों इसी दुनिया में करना है, और अल्लाह पाक ने उसके लिए बेहतरीन हमारे लिए मौका दिया है। इसलिए आप तमाम से बेहद आजिज़ाना गुजारिश है कि हम ये तय करें कि भाई ये दीन की मेहनत जो है ये इसमें मेरा हिस्सा पड़ जाए, और अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे दे और मेरे गुनाहों की नहोसत से मुझे महरूम न करे, और मेरे माल की गंदगी से मुझे महरूम न करे। जब हमारे माल में गंदगी बहुत हो जाती है उसको नहीं कबूल किया जाता, जब हमारे आमाल में गंदगी और खबासत ज़्यादा घुस जाती है फिर उसको कबूल नहीं किया जाता। ये हदीसों में है ये बात, ये कुरान पाक में है ये बात। तो हम माफ़ी मांगे अल्लाह पाक से कि या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, और मेरी बदामलियों की वजह से मुझे महरूम न करना फरमा, और मेरे माल की गंदगी की वजह से मेरे माल को अपने मुबारक रास्ते में कबूल होने से महरूम न फरमा, और मुझे हिम्मत दे और मुझे तौफीक दे। और मेरे हाथ में चूँकि इख्तियार सिर्फ नीयत करने का है, इरादा करने का है, कोशिश करने का है, मैं इरादा करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, आप हैं उसके बाद रास्ता खोलने वाले। वो अगर रास्ता खोलेंगे तो बंदा कर सकेगा, अगर वो रास्ता नहीं खोलेंगे तो बंदा नहीं कर सकता। और इरादे की हिम्मत देना ये भी अल्लाह पाक ही की तौफीक से होता है, कोशिश करना ये भी अल्लाह ही की तौफीक से होता है, मगर इरादा और कोशिश करते हुए अल्लाह तबारक व तआला का हाथ पीछे कैसे होता है ये अल्लाह महसूस नहीं कराते। बंदा खुद अपने ऐसा समझता है मैं अपनी मर्जी से इरादा कर रहा हूँ, हालांकि उस मर्जी के पीछे उनकी मर्जी होती है। बंदा खुद समझता है कि मैं अपनी मर्जी से कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि उस कोशिश के पीछे अल्लाह का हाथ होता है, लेकिन इसके बाद की चीज़ें तो इसके हाथ में भी नहीं होती। जब बंदा ये दोनों काम करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला रास्ते खोलता है। इसलिए मेरे दोस्तों हिम्मत करो, इरादा करो। माशाल्लाह कोई साथी अभी इस वक्त तो जमात में ही है, अनी भाई जमात में है, शाह साहब जमात में है।